जब तक मुसलमान इख्तसाब से डरते थे, मुसलमानों के मुकाम बुलंद थे। अबू बकर सिद्दीक के बाद जब उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बनाने की बात हुई तो कांपने लगे। कहा, मैं नहीं ये जिम्मेदारी उठा सकता। कहा, नहीं उमर, आपको उठानी पड़ेगी। उस वक़्त लोग हरीस नहीं होते थे कि हमें चुनो, वो जान बचाते थे कि हम नहीं कर सकते ये काम। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, जिनको उम्र सानी भी कहते हैं, शहजादे थे। इतने मोटे ताज़े थे कि जिस्म पे हाथ रखो तो गोश्त ही गोश्त हो, लेकिन जब उन पे खिलाफत की जिम्मेदारियां पड़ी तो सूख के कांटा हो गए कि चुटकी भी भरो तो जिस्म पे गोश्त नहीं था। क्यों वो लोग कहते थे कि दरियाए फरात पे अगर एक कुत्ता भी भूखा रह गया तो उमर तुमसे खबर होगी। रातों को भेस बदल के गश्त करते थे कि कहीं को भूखा तो नहीं, कहीं को जुल्म और ज्यादती तो नहीं हो रही। अल्लाह की मदद भी थी, ऐसे लोगों पे अल्लाह की मदद आती थी। एक जंग का मौका था, मुसलमान किसी महाज पे लड़ने गए। दुश्मनों में से एक शख्स, खूब कुलाफ उसका नाम आता है, उसके दिल में ख्याल आया कि ज़रा मैं आज रात मुसलमानों के लश्कर का ज़रा जायज़ा तो लूँ। ये करते क्या, क्योंकि उस दौर में एक असूल था कि दिन दिन में लड़ते थे, जो ही सूरज डूबता था फिर जंग ख़त्म, उसके बाद कोई हाथ नहीं उठा सकता था, अगले दिन फिर तैयारी करते थे। ये रात को मुसलमानों के लश्कर को देखने के लिए गया और इसने जाके क्या देखा, इसी के लफ्ज़ों में बताऊंगी। अपने लोगों के आके कहने लगा, होम यानी मुसलमान, मुसलमानों के सिपाही, होम फुरसानुम बिन नहार व रुहबानुम फिल लैल। ये मुसलमान कैसे हैं, दिन के वक्त घुड़सवार बन जाते हैं, यानी दुश्मन की आंखों में आंखें डालने वाले, लड़ने वाले घोड़े बन जाते हैं, और रातों को रुहबानुम फिल लैल, अल्लाह के डर से राहिब बन जाते हैं, रोने वाले। कहने लगा, मैंने देखा लश्कर इस्लाम का एक एक सिपाही रात को तहज्जुद में कुरान पढ़ रहा। कहने लगा, मुझे लश्कर इस्लाम से भिन भिन की मक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज़ आई। लेकिन जब मैंने गौर किया तो देखा कि हर सिपाही तहज्जुद में अल्लाह को कुरान सुना रहा था। ये होते हैं वसफ अल्लाह की मदद लाने वाले, कि जब लोग दिन को जिहाद करके रातों को उन्हीं की फिल्में नहीं देखा करते थे, जब लोग उन्हीं के साथ हमदर्दियों के दिन मनाने के लिए छुट्टियां करके यौमे कश्मीर और यौमे फुलां और यौमे फुलां और सारा दिन फारिग उन्हीं के कल्चर को देखने वाले। आज क्यों हमने लोगों को ये जुर्रत दी कि जो बयान आपने भी पढ़े होंगे अखबारों में, आज से 7, 8, 10 साल पहले गालिबन एक बयान छपा था अखबारों में सोनिया गांधी का, कि हमें मुसलमानों के साथ सरहदी जंग का कोई फिक्र नहीं, अगर सरहदों पे हम ना भी कामयाब हों लेकिन हमने नज़रियाती जंग जीत ली है। कैसे, कि आज मुसलमानों का बच्चा बच्चा इंडियन मूवीज़ का दिल दादा है। सच है कि झूठ है, पूछें नाम बच्चों को, छोटे बच्चों से पूछें, बड़ों से पूछें, टिप्स पे हैं। मैं अक्सर ऐसे तजुर्बे करती रहती हूँ। एक जगह मदर डॉटर्स का सेशन था तो मैंने बच्चियों को भी इन्वॉल्व करना था। मैंने कहा कि चलें छोटी सी एक्टिविटी करते हैं दर्स से पहले, चलें 10 सहाबा के नाम बताइए। आप मान सकते हैं कि शायद ही कोई एक भी बच्ची होगी जिसने 10 सहाबा के नाम बताए। फिर मैंने अगला सवाल किया कि 10 सहाबियात के नाम बताइए, नहीं बता सके। मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7-8 बीवियों के नाम बता दें, नहीं बता सके। कुरान की 10 आयतें सुना दें, नहीं बता सके। इसके बाद मैंने कहा, देखिए जैसे अब सच बोल रहे थे आगे भी सच बोलिएगा, मुझे 10 सिंगर्स के नाम बताइए। यकीन करें मुझे, उन्होंने जो नाम बताए मुझे तो ना उस दिन समझ आए ना आ जाए, लेकिन सबको आते थे। मैंने कहा 10 एक्टर्स के नाम बताइए, 10 क्रिकेटर्स के नाम बताइए। हम कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह की मदद आए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वान तुमुल आलऊन, तुम ही बुलंद हो, लेकिन शर्त है क्या, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो, अगर तुम्हारे अंदर ईमान है तुम्हें फतह होगी। आज भी मुसलमानों को फतह होगी, शर्त क्या है कि ईमान, अमल, शिर्क से पाक, जब तक मुसलमान इन चीज़ों को दूर नहीं करते। यानी मैं जो अगर पूरी बातों को समेटूँ ना, तो एक चीज़ समझ में आती है कि यानी मुसलमानों की जो का जवाल है, आज मुसलमान दबे में, उसके दो सबब हैं। पहला सबब क्या है? मुसलमानों का आपस में इंतशार, फ़िरकाबंदी, मसलक, इस्लाम के नाम पे भी बटे हुए हैं। सच है कि झूठ है? मसलक के नाम पे। आपका मसलक क्या है कि आज मुसलमानों के ऊपर इस तरह जवाल क्यों है? इसकी दो वजूहात हैं जो हमें कुरान और सुन्नत से नज़र आती हैं। पहली वजह क्या है कि आज मुसलमान फ़िरकों में बटे हुए हैं, इज्तमाईयत नहीं रही। इनफ़िरादी तौर पे बहुत सारी नेकियां कर रहे होंगे, इज्तमाई तौर पे नेकियों की कमी है। सच है कि झूठ? एक उम्मत बन के नहीं जीते। अब देखिए कि आज चारों तरफ अगर लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ कोशिशें कर रहे हैं, और मुसलमान आज भी इस बात के शिकार हैं कि हम अपने मसलक की बेस पे जुड़ें, अपनी जमात के नाम पे जुड़ें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे जुड़ें। जब दुश्मन की गोली चलती है ना, तो वो ये नहीं देखती कि हम सुन्नी हैं, हम वहाबी हैं, हम शिया हैं, या हम कुछ और। वो मारता है तो आपको मुसलमान समझ के मारता है। तो पहली चीज़, जो पहला सबब है, वो तफरकाबाजी है। और हिस्ट्री में आप देख लें कि जब भी कभी मुसलमानों के ऊपर कोई दुश्मन गालिब हुआ, तो ये वही वक्त होता है कि जब लोग असल दीन को छोड़ के जुज़वी बातों में पड़ जाते हैं, फरोई बातों में पड़ जाते हैं। आज हम इस बात पे तो बड़ी बहस करते हैं कि नमाज में हाथ कहाँ बांधने हैं, सजदा कैसे करना है, लेकिन ये दर्द कितने लोगों को है कि वाकई लोग नमाज पढ़ते भी हैं कि नहीं। शैतान अपना काम कर रहा है। फहाशी आम है, उरियानी आम है। जितनी तेज़ी से मुसलमानों के लिबास ख़राब हो रहे हैं, जितनी तेज़ी से मुसलमानों के सोर्स ऑफ इनकम ख़राब हो रहे हैं, सबको पता है। नस्लों की नस्लें बिगड़ रही हैं, अखलाक बिगड़ रहे हैं, बोलने, खाने, पीने, चलने का अंदाज़ बदल रहा है, इसकी फ़िक्र कम है। हाँ, जहाँ बात आती है तो वो ये है कि आपका ताल्लुक़ किस जमात से है, ताकि अगर आप इसी जमात से, फिर तो हम आपकी बात को कुछ अहमियत दें, और नहीं है तो हम तकब्बुर से सर हटा के चले जाएंगे कि ये बातें हम नहीं मानेंगे। दूसरी वजह जो समझ में आती है वो क्या है? अल्लाह के नबी सल्लम की एक हदीस सामने रख देती हूँ। आपने फरमाया कि एक वक्त होगा कि दुश्मन कौमें एक दूसरे को दावत देंगी कि आओ मिल के मुसलमानों पे हमला करते हैं। जिस तरह तुम में से कोई खाने का दस्तरखान बिछाए और खाने की दावत दे, तो सहाबे कराम ने फ़ौरन पूछा था कि अल्लाह के नबी सल्लम, क्या उस वक्त मुसलमान थोड़े होंगे? तो आपने फरमाया, थोड़े नहीं होंगे, लेकिन उनके अंदर एक बीमारी आ जाएगी, और वो बीमारी क्या है? वहन की। अब सहाबे कराम अरबी थे, अरबी ज़ुबान से उनका पूरा शगफ़ था, इसके बावजूद भी कहने लगे कि अल्लाह के नबी, वहन क्या होता है? मल वहन। उनको तो हो सकता है समझ आ गया हो, लेकिन आपकी ज़ुबान से कहलवा के आने वाले लोगों के लिए इसका मानी शायद वाज़े करना चाहते थे। तो आपने उनकी बात के जवाब में फरमाया कि वहन क्या है? हुब्ब दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से कराहत करना। जब मुसलमानों के अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी, तो दुश्मन उनके ऊपर हमले की तैयारियां करेंगे, दावत देंगे कि आओ मिल के इनको खाते हैं। आज देख लें तो बात कुछ ऐसी ही है। आज जितना दुनियादार मुसलमान हो गया, शायद इतना तो काफिर भी नहीं रहा। उसके पास इतनी बड़ी बड़ी जायदादें नहीं जितनी मुसलमान के पास है। वो तो बस वक्त गुजारा करता है, जो गुजर गया तो चलो ठीक है, ऐश कर लो, कल देखेंगे। लेकिन जो आज हम मुसलमानों का ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ हो गया, कब आखिरी दफ़ा हमें कौम का गम लगा था? कब आखिरी दफ़ा हमारी आंख से आंसू बहा था, एक कौम होने के नाते अपने बुरे हाल को देख के, बुरे रवैयों को देख के? अजनबियत है आज अपने दीन से। आज हमारी नस्लें अपने ही दीन से बेगाना हो गईं, मशकूक है उनके लिए दीन। आज हमारे ही बच्चे पूछते हैं कि क्या वाकई जिहाद करना ठीक है, क्या ये टेररिज्म तो नहीं, क्या ये ज्यादती तो नहीं। आज मुसलमान बच्चियां पूछती हैं कि दलील दीजिए कि क्यों ज़रूरी है कि हम शादी करें, हम बग़ैर शादी के क्यों ना रहें। आज मुसलमान पूछता है कि बताएं क्या ज़रूरी है कि माँ बाप को इन्वॉल्व किया जाए अपनी शादी के फ़ैसलों में। आज का मुसलमान मजबूर हो गया अपनी बच्चियों की शादियां गैर मुस्लिम बच्चों के साथ करने पे। क्या करें, इनको रोकेंगे तो रुकेंगे नहीं, तो बेहतर है कि खुद ही कर दें, और खुद करेंगे तो हाल क्या होगा कि फिर वैसे ही करेंगे जैसे लोग करते हैं। किस इस्लाम पे आज हम फख्र करें, किस इस्लाम का नाम लेते हैं? क्या अपने आप को मुसलमान कहने से मुसलमान हो जाएंगे? क्या हमारे अंदर इस्लाम आ गया? क्या हमने वाकई इस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार कर लिया कि कल आने वाले वक्तों में हम और हमारी नस्लें इस्लाम पे रहेंगी? क्या खौफ नहीं आता आने वाले कल से? जिस तेज़ी से बेदीनी है, जिस तेज़ी से हम अपने दीन से दूर हैं, मसलहत पसंदी आज हमारे अंदर, मुआमला फहमी आज हमारे अंदर, मुफादात की जंग हम लड़ने को तैयार। सिर्फ एक चाहिए, दुनिया दुनिया दुनिया, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। कसरत की हवस ने तुम्हें हलाक कर दिया, यहाँ तक कि तुम कब्रों में पहुँच गए। मुझे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कही हुई एक बात याद आ जाती है, बनी इसराइली रिवायत है कि एक बार उनके सामने एक औरत आई, बूढ़ी औरत थी, रो रही थी, कहने लगी कि मूसा मेरे जवान बच्चों का इंतकाल हो गया, मैं बड़ी दुखी हूँ। कहा क्या उम्रें थी? कहा एक की उम्र 100 साल थी, किसी की 200 साल थी, बड़ी बड़ी उम्रें होती थी, इसके बावजूद माँ रो रही है। तो आपने कहा कि मूसा, आपने फरमाया कि ए अम्मा, हमारे बाद एक ऐसी कौम आने वाली है कि जिनकी शान तो बहुत बड़ी होगी लेकिन उनकी उम्रें बड़ी थोड़ी होंगी, छोटी उम्रें होंगी। 60 से 70 के बीच में तो हमारी उम्रें हैं। तो वो सम्मा ने एक बात कही थी जो आपके साथ शेयर करूंगी, कहने लगी कि अच्छा, उनकी उम्रें छोटी होंगी तो इसका मतलब वो तो फिर मट्टी के घरों में रहेंगे, कौन तकल्लुफ करे घर बनाने का, अब तो जाने के दिन है। आज कोई आके देखे तो उस उम्मत का हाल क्या है। आज हमारी जन्नत हमारी दुनिया में है, आज हमारी दुनिया हमारी जन्नत, आज सारी लग्जरी दुनिया में चाहते हैं, आज नरम गद्दों पे सोना हमारा काम है। आप देखिए, जब असल मकसद भूल गया, बचेंगे कहाँ से, दिफा कैसे करेंगे? 17 साल की उम्र का था मोहम्मद बिन कासिम जब उसने सिंध को फतह किया। आज जाके हम अपने अपने 17 साल के जवानों को देख लें, पूछें इस्लाम का दर्द है? आज उनके भी हाथों में है, लेकिन वो तऊस और रिबाब हैं। अलामा इकबाल ने भी कहा था ना, किसी को आता है वो शेर, शमशीर और सना अव्वल, तऊस और रबाब आखिर। कहते थे मुसलमान के हाथ में शमशीर और सना होगी, तऊस और रबाब आखिर, म्यूजिकल ऑर्गन्स नहीं, उनके हाथों में इस्लाम के दिफा के लिए हथियार होते थे। वो माएँ थीं जो बच्चों को लोरियाँ सुनाती थीं, तो मुजाहिदीन के किस्से सुनाती थीं। आज की माँ के पास वक्त ही नहीं है। आज तो बच्चे इतने बदबख्त निकले बेचारे कि माँ की गोद ही नहीं नसीब। 6-7 दिन के बच्चे को माँ छोड़ के जाती है किसी के पास बेबी सिटिंग के लिए, के रखो मैं चाह रही हूँ कुछ और डॉलर कमाने, कुछ और अब इसका सामान तैयार करना है। आज बच्चों के लिए नरम गद्दे, उनके दुनिया में आने से पहले उनके कमरे सेट हैं मैचिंग, उनको क्या लगे? ये तो हमारी निगाहों का एक सामान है, उनको क्या लगे? आप उसको नीले में लपेटें, उनको पीले में लपेटें, उनकी बला से, उसको तो माँ चाहिए थी। आज की कौम को माँ नसीब नहीं हुई। आज की माएँ दूसरों के बच्चे तो पाल जाएंगी, अपने बच्चे दूसरों की गोदों में, और दिए भी वहाँ जहाँ से उनका मिजाज बदला, जहाँ से कहानी बदली। बातें ज़्यादा करती जाऊँगी तो बात लंबी होती जाएगी। सिर्फ आपके सामने 4 या 5 पॉइंट्स रखूँगी कि करना क्या है। हल क्या है, क्योंकि किसी डॉक्टर का दवा बीमारी को कुरेदते जाना, जख्मों को अंदर से कुरेदते जाना हल नहीं होता, फाहा रखना है। जख्म कैसे मंदमिल होंगे, आज मेरा, हमारा नहीं, मेरा क्या हिस्सा है मुसलमानों के हालात को बदलने में। बाज़ दफ़ा हम कहते हैं अखबार पढ़ के हम मुसलमान बन गए, हम उनके बारे में बात करेंगे, और मैं महसूस करती हूँ कि आज के दौर में आदतन खबर भी पढ़ते हैं, एकदम तकलीफ होती है कि इतने मारे गए और दैट्स इट। आप कहेंगे आप इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती हैं कि हमें फलां जगह फलां मुल्क में इतने मुसलमानों के मरने का गम नहीं, ये तो बहुत ज़्यादती की आपने। तो हम खुद ही देख लेते हैं, खुदा न खास्ता किसी अपने प्यारे के मरने की खबर सुने तो उसके बाद वो दिन वो हफ्ता अगला कैसा गुजरता है। कोई अपना एक मरता है तो गम लग जाता है, हजारों रोज मरते होंगे खबर सुनते हैं, और उसके बाद फिर कहते हैं चलो पार्टी में जाना है तैयारी करो। क्या बदला आज मुसलमानों की रातें बदली, आज मुसलमानों की जिंदगी के तौर तरीके बदले, दावतें और खाने बदले, ज्वेलर्स की दुकानें बंद हुई, आज हमारे डेकोरेशन पीसेस की दुकानें बंद हुई कि बंद करो ये सब कुछ, हम गम की हालत में हैं। हमें तो एक एक पैनी बचानी थी इस्लाम के दिफा के लिए, इसको फैलाना था, इसको आम करना था, उसको छोड़ के अभी भी कहाँ तसल्ली हुई। अभी तो कई कमरों की मैचिंग लेनी है, अभी तो कई जोड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी नहीं, करें तो क्या करें। तो अजीज़ साथियों, चंद चीज़ें हैं जो सबसे पहले तो मेरे लिए हैं, मैं आपको नहीं कहती, मैं अपने आप को कहती हूँ कि कौम अफराद से बनती है, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। पहले इस बात को समझेंगे तो ये बातें समझ आएंगी। छोटे छोटे तिनके मिलते हैं तो झाड़ू बनती है, हर तिनका अपनी जगह अहम है। इस वक्त इस हॉल में हम जितने लोग बैठे हैं, हम में से एक एक इस चीज़ का जिम्मेदार है जो मुसलमानों के साथ हो रहा है। क्यों? कि इनफिरादी गुनाहों पे इज्तमाई अजाब आते हैं, मुख्तलिफ लोग गुनाह करते हैं तो उसका वबाल सब पे आता है, बाज़ दफ़ा तो फिर जो गुनाह नहीं करते उन पे भी आता है। क्यों? कि रोका क्यों नहीं। तो पहली चीज़ जो अल्लाह ताला ने अपने कलाम में हमें दी, आपके सामने रखती हूँ, सूरत अल-अनफाल की आयत नंबर 45 और 46 है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा लकीतुम फ़ियतन फ़स्बुतू वस्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून व अतीउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़ऊ फ़तफ़शलू व तज़हब रीहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ए ईमान वालो, किसको कहा है? ये पुकार आसमान से आई है ज़मीन के खाकी इंसानों के लिए। मैं जहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू की आयत पढ़ती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि आसमान वाला तो हमें पुकार रहा है और हम सुनते ही नहीं, हमने कान बंद किए हुए हैं, हम मस्त हैं, हमारे कानों पे हेडफोन लगे हुए हैं, कोई पुकारे तो पुकारे। ख़त्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम यजअलून असाबियहुम फ़ी आज़ानिहिम। उंगलियां कानों में डली, रब बार बार कहते हैं ईमान वालो किधर हो, ईमान वालो होश करो, संभल जाओ, अपने आने वाली नस्लों पे रहम करो, मत बेचो अपने मुस्तकबिल को, मत तुम शिकार बनो अपनी आने वाली नस्लों की बददुआओं का। आने वाली कौमें लानत भेजती हैं पिछली कौमों पे, जब उनके गुनाहों की वजह से उन पे सजाएं आती हैं। अगर बचना चाहते हो, अगर अल्लाह की मदद लेना चाहते हो, तो क्या करो? जब किसी गिरोह से तुम्हारा मुकाबला हो तो पहली चीज़ साबित कदम रहो, फेस करो। ये मैंने आपको जितने वाक्यात सुनाए ना तारीख़ के, ये फ़स्बुतू के थे। एक मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हल्का सा जुमला लिख के भेजते ना अबू जहल को कि कोई बात नहीं, हम तुम एक ही हैं, जो कहोगे मानेंगे, अपनी तलवारें रख लो। वो जश्न मनाता, वो पौंद होता आके आपके कि यही तो हम चाहते हैं। याद रखिए, काफिर को मुसलमान से और कुछ नहीं लेना, सिर्फ उसके ऊपर अपना हाथ रखना है, उसको क्या लगे आप उनसे क्या मांग रहे हैं। वो अपने हाल में खुश, आप अपने हाल में खुश, लेकिन वो क्या चाहता है कि इस्लाम ना रहे। वो ये भी नहीं चाहते कि कुफर आ जाए इनमें। एक पादरी जो पाकिस्तान में थे, उनका कॉल मैंने खुद उसको पढ़ा और देखा कि किसी ने कहा कि आप इतनी मिशनरी का काम करते हैं इधर, आपको पता है कि पाकिस्तान में मिशनरी स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो नॉन मुस्लिम उसको प्रमोट करते हैं, आप इतना पैसा लगाते हैं अपनी दावा पे, अपना दीन फैलाने के लिए मटेरियल देते हैं, फ्री चीज़ें बांटते हैं, हम तो नहीं देखते कि मुसलमानों के पास कोई क्रिश्चियन मुसलमान जो है वो क्रिश्चियन हो, हमें हमें तो कोई असर ऐसा नहीं दिखता, तो आप क्यों इतना पैसा ज़ाया करते हैं? तो आपको पता है उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा हमारा ये हदफ तो नहीं है कि मुसलमान काफिर हो जाए, ईसाई हो जाए, ईसाई तो एक शर्फ है, ये तो एक ऑनर है, हम कहाँ चाहते हैं कि मुसलमानों को ये ऑनर मिले, यानी इधर भी रौनत है। हाँ हमारा एक टारगेट है, हमारा एक हदफ है, और वो क्या? कि मुसलमान मुसलमान ना रहे, और इसमें हम कामयाब हैं, कि मुसलमानों के अंदर इस्लाम ना रहे, और आज हम इसमें कामयाब हैं कि इनके जहन बदल गए, इनकी सोचें बदल गईं। वो ये नहीं चाहते कि आप उनके बने, वो ये चाहते हैं कि आप अपने ना रहें। अलामा इकबाल ने भी कहा था ना, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, तू अपना तो बन, तुझे नहीं पता कि तुझे क्या करना है, तुझे कैसा बनना है, अल्लाह तुझसे क्या चाहता है। तो लिहाजा पहली चीज़, अगर मुसलमान कुरान से हिदायत लेना चाहे तो फसबुतू, जमो डटो, ठीक है इस्लाम अमन पसंद मज़हब है, शर को नापसंद करता है, किसी पे जुल्म और ज्यादती नहीं करता, अफ़ो दरगुज़र का हमेशा पैगाम है, लेकिन ये कमज़ोरी की अलामत तो नहीं, बुज़दिली की अलामत तो नहीं? अल्लाह ताला तो कहते हैं कि ये कैसे जम जाते हैं कुफर के आगे, कान्नहुम बुनयानुम मरसूस, सीसा पिलाई भी दीवार, सीने खोल के छाती तान के खड़े होते हैं, तभी तो काफिर दबता है। तो पहली चीज़ हमें या हमारे बड़ों को जो करनी है वो क्या है कि मुफाहमत पसंदी या बीच की राहें निकालने की बजाय अपना एक मनहज, एक अपनी आइडेंटिटी दिखानी है। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तौहीद की बात की थी तो लोगों ने इग्नोर किया, अहमियत ही ना दी कि ये क्या चंद सर फिरे हैं और एक अल्लाह की बात करने लगे। लेकिन कुछ साल गुजरे, मुसलमानों की तादाद में इजाफा हुआ, अब मक्का वालों को लगा कि मुसलमान ये तो एक ताकत बनते जा रहे हैं। नबी सल्लम की मक्की ज़िंदगी के तकरीबन छठे सातवें साल के बाद से ये कैफियत हुई, अब उनको फिक्रें लगीं, कुछ करो इनका भाई। उस वक्त जो पॉलिसी थी वो क्या थी? लालच दो, मुफाहमत, चलो सुलह कर लेते हैं। मक्का के सरदार मिल के आए अल्लाह के नबी के पास, ए अल्लाह के नबी, आप नबी हैं ना, आप कहते हैं अल्लाह एक है, ठीक है हम एक साल मान जाएंगे, एक साल हम तुम आपके रब को मानेंगे, लेकिन शर्त क्या है कि अगला पूरा साल आप हमारे बुतों को खुदा माने, बराबरी की बुनियाद पे मुफाहमत कर लेते हैं, असिमिलेट हो जाते हैं, सारे दीनों को मिला के एक कर देते हैं। आपने कहा ये नहीं हो सकता, कहा अच्छा चलें ऐसा भी नहीं हो सकता, ऐसा करें कि आप एक महीना हमारे बुतों को पूज लें, हम उसके जवाब में एक साल तक आपके खुदा को मान लेंगे, और दबे एक दिन तक भी रिवायतों में आता है कि बात आ गई थी, बस एक दफ़ा हमारे बुतों को पूज के कह दें, हमारी अना की तस्कीन हो जाए, हमारी ईगो को सेटिस्फाई कर दें, हम आपके खुदा को मानेंगे। अल्लाह ने कुरान में उतार दिया, कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा ताबुदून, क्यों? लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम अपना दीन संभालो, हमारा अपना दीन, तुम्हें अपना तरीका मुबारक, हमें अपना तरीका मुबारक, क्यों? इस्लाम का एक मिजाज है, इसको किसी की पैचिंग नहीं कर सकते। आप कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, आप इस्लामी का लफ्ज़ लगा के जमहूरियत को इस्लाम कैसे कर सकते हैं? एक तरीका है, एक मनहज है। तो बहरहाल पहली चीज़ साबित कदमी, आंखों में आंखें डालिए, कभी ज़रूरत नहीं होगी। जब सच्चा मुसलमान होता है तो लोग उससे डरते हैं, जब झूठा मुसलमान होता है तो लोग उसको डराते हैं। मसलन आप देखिए कि एक जंगल का शेर है, लोग उससे डरते हैं ना, किसी को खबर भी मिल जाए ना कि इधर शेर है झाड़ियों में छुपा हुआ तो लोग बाहर नहीं जाएंगे। और एक वो शेर है जो सर्कस के मैदान में नाच रहा है, जिसके अंदर भूरी भूसी भरी हुई है शेर की खाल में, और लोग उसको ऊपर से नचा रहे हैं, लोग टिकट दे के जाते हैं शेर का तमाशा देखने के लिए, फ़र्क किस बात का है? जंगल का शेर असली शेर है, और सर्कस का शेर नकली शेर है, बस यही बात है। जब मुसलमान असली मुसलमान होता है तो कुफर कांपता है, थर थर कांपता है। वो कुबकुलाव की जो बात सुना रही थी उसने ये भी कहा था, जब उसने कहा ना कि ये दिन के वक्त फरसान है और रात को रोहबान है, फिर कहने लगा है मेरी कौम मैं तुम्हें ये मशवरा देता हूँ कि इनसे दूर चले जाओ। मैं ये नहीं कहता कि मेरा इनसे मुकाबला हो और मैं जीतूं, मैं ये दुआ करता हूँ कि मेरा ऐसे लोगों से कभी सामना ही ना हो। छोड़ो इनको, इनके हाल पे चले जाओ, बीसियों मिसालें हैं। हम एक दफ़ा खड़े होंगे अपनी जगह पे, खुद ही समझ आएगी। और खड़ा होने के लिए जो चीज़ चाहिए असल में वो नहीं है, उसको आगे देखते हैं। दूसरी चीज़ जो इसी आयत में है वो क्या है, फसबुतू के बाद, वस्कुरुल्लाह कसीरा, अल्लाह को याद करो, तुम्हारी ज़िंदगी अल्लाह की याद वाली ज़िंदगी हो। तुम्हें पता, तुम्हें देख के लोग रब को माने, ये रब वाले हैं, इनका रब है, उसके बताए हुए तरीके पे ज़िंदगी गुजारें, उसके साथ ज़ुबानें भी इनके उसके ज़िक्र से तर हों, इनके दिलों में उसका ज़िक्र हो मोहब्बत की सूरत में, और इनके अज़ा उसकी उसके ज़िक्र में डूबे हों, इनकी ज़िंदगी अल्लाह वाली ज़िंदगी हो। ये ऐसे लोग हो जिनको देख के अल्लाह याद आ जाए, और लोग मैदान जंग में भी जिक्र करते थे। सहाबे कराम जब लड़ते थे हाथों से तलवारें चलाते थे और ज़ुबान से तस्बीहात करते थे। आज जब बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे इंडियन गानों की धुन है, इंग्लिश गानों के बोल हैं, आयतें पूछिए कितनी आती हैं, हदीसें पूछिए कितनी आती हैं, खुद ही पता चल जाएगा कि मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या है, किसका जिक्र है ज़ुबान पे, जो दिल में होता है उसका जिक्र होता है। और फिर तीसरी चीज़, व अतीउल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल के फरमा बरदार बन के रहो। अल्लाह का जिक्र उसी की ज़ुबान पे आता है जिनके दिल में अल्लाह की याद होती है, जो उस तरीके को पसंद करते हैं जो अल्लाह के और उसके रसूल के फरमा बरदार होते हैं। इताअत वाली ज़िंदगी है, आज इताअत वाली ज़िंदगी कहाँ है? इताअत सिर्फ 4-5 लाइनों की अगर चेकलिस्ट बना के अपने आप को सारी चेक कर लें बाद में, घर में इताअत है, तिजारत में इताअत है, स्कूलों में इताअत है, शादियों में इताअत है, गमियों के मौके पे अल्लाह के रसूल की इताअत है, खुशी गमी पहनना ओढ़ना जीना मरना, जब तक पूरे मुसलमान नहीं बनेंगे अल्लाह की मदद नहीं आएगी। मदद आती है मुसलमान पे, इस्लाम वाले पे, और इस्लाम ही नहीं है तो मदद किसकी? सिंपल बात है ना, मदद तो मुसलमान की थी, कोई ना कोई चीज़ तो फ़र्क है ना काफिर और मुसलमान में, तो जब मुसलमान और काफिर का फ़र्क ही मिट गया तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या रहा? वो चीज़ ही नहीं है जिस पे लड़ रहे थे, वो ख़त्म हो गया, मामला डिसॉल्व हो गई। लोग कहेंगे किस पे लड़ते हो? बस अगर दो भाई हैं एक प्लॉट पे लड़ते हैं, वो कहते हैं मुझे लेना है, वो कहते हैं मुझे लेना है, तो पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट वो प्लॉट है ना, वो प्लॉट ही ना रहे, वो कोई तीसरा ले ले, फिर भी वो दोनों लड़ रहे हो तो लोग क्या कहेंगे? अल्लाह के बंदो लड़ते किस पे? वो चीज़ ही नहीं जिस पे लड़ते हो, ख़त्म हो जाएगी ना लड़ाई। इसी तरह मुसलमान और काफिर की लड़ाई असूलों की, तर्ज़ ज़िंदगी की लड़ाई है। इंशाअल्लाह ताला जितनी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे उतनी ही मदद आएगी। फिर चौथी चीज़ जो इस आयत में है, उसी की रोशनी में आपसे बात करूँगी, वला तनाज़ऊ, अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा? फतफशलू व तज़हबरी हुकुम, आपस में ना झगड़ो, क्योंकि जब मुसलमान आपस में लड़ते हैं ना तो उनकी हवा उखड़ जाती है। जिस घर में शोहर बीवी सारा दिन लड़ते रहें वहाँ कोई आना पसंद करेगा? कोई मेहमान आता है? कोई घर बच्चे उनसे डरते हैं? वो बच्चे ना माँ से फिर डरते हैं ना बाप से डरते हैं, क्योंकि वो बाप के मुँह से माँ को गालियाँ देता हुआ सुनते हैं और बाप माँ के मुँह से बाप की सुलबातें सुनते हैं। मुसलमानों का रोब ख़त्म हो जाता है जब वो आपस में लड़ने लगते हैं। इज्तमाईयत, इत्तहाद, फिर इंशाल्लाह बात बनेगी। और उसके बाद फिर अगली चीज़ अल्लाह ताला ने क्या इस आयत में फरमाई थी, वस्बिरू, सब्र करो। सब्र से यहाँ क्या मुराद है, दो तीन तरफ से आप इसको देख सकते हैं। पहली चीज़ तो सब्र क्या है कि अपने दीन पे जम जाओ, इस्तकामत भी तो सब्र ही है ना। दूसरी बात यह है कि सब्र क्या है कि हलाल पे कनात करो, और वो जो वहन की बात की थी ना वो सब्र ही है, थोड़े पे राज़ी हो तो सब्र है, अल्लाह के दिए हुए पे राज़ी हो, जायज़ मिलता है हलाल से मिलता है तो ले लो, अल्लाह ताला तुम्हें दे देगा। तो जितना ज़्यादा मुसलमान की ज़िंदगी सब्र वाली होगी, इसी तरह सब्र का एक और माना भी है कि रिएक्शनरी ना हो, कोई तुम्हें गलत काम कहे, कोई गलत बात कहे तो तुम नारे ना लगाओ, अपनी बसों के शीशे ना तोड़ो, फलां मुर्दाबाद के नारे ना लगाओ। आज यही हो रहा है ना, अमली तौर पे काम कुछ नहीं करते, ज़रा कोई हमारे दीन पे बात करता है, अल्लाह के नबी के खिलाफ काम करता है तो हम जाके अपनी बसों को तोड़ने लगते हैं। ये क्या किया तुमने, रिएक्शन दिखाया। छठी चीज़ जो हमारा इस वक्त इंशाअल्लाह ताला अपने आप को बचाने के रास्ते में मददगार होगी, वो क्या है, हुब्बुद दुनिया और कराहियतुल मौत, इससे निकलना है। मुसलमान को मौत ज़िंदगी से ज़्यादा प्यारी होती है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे कि मैदाने जंग में एक रात गुजारना मुझे शबे ज़िफाफ से ज़्यादा प्यारा है। शबे ज़िफाफ कहते हैं गोल्डन नाइट को, शादी की रात। दीवाने तो नहीं थे, मजनू तो नहीं थे, उनको लज्जत मिलती थी। उनके लिए ये बात बहुत बड़ा ऑनर था कि अल्लाह के लिए कर रहे हैं। हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नौ ब्याह था, बीवी के पहलू से उठ के मैदान उहद में गए और शहीद हो गए। जब बाद में जंग ख़त्म हुई तो एक औरत लिपटी हुई चादर में शर्माती हुई आई और कहा, अल्लाह के नबी आपको एक ख़बर देनी थी। और वो क्या, कि मेरे शौहर हंजला जब मैदान जंग में आए तो जुनाबत से थे, इनके ऊपर गुसल वाजिब था, तो मुझे डर हुआ कि शोहदा को गुसल नहीं दिया जाता, कहीं आप इनको बग़ैर गुसल के ना दफना दें। तो कहा कि औरत गम ना करो, मैं देख रहा हूँ कि हंजला की लाश को फरिश्ते गुसल दे रहे हैं। और सहाबे कराम ने जब उनकी मैयत को उठाया तो उसमें से पानी के कतरे गिर रहे थे। उसके बाद से उनका नाम गसीलुल मलाइका, फरिश्तों के गुसल दिए हुए। क्या जज्बे थे, इससे भी कोई नाजुक लम्हे होंगे ज़िंदगी के। फ़र्ज़ आपको पुकार रहा है, दीन का दिफा आपने करना है, माल कमा रहे हैं तो भी फ़र्ज़ की पुकार है, नफ्स की ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं, जज्बात के अंदर मगन है, फ़र्ज़ पुकार रहा है। जब अल्लाह का दीन प्यारा होता है तो कोई चीज़ रास्ते में रुकावट नहीं बनती। हम तो 5 वक्त नमाज के लिए नहीं आते, हैया अलल सलाह और हैया अलल फलाह पे, हम जिहाद की कॉल पे कहाँ जाएंगे। और एक आखिरी चीज़ जिसमें मुसलमानों की बका है, और वो क्या है, कुन तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफी वतन हौन अनिल मुनकर। ओ मुसलमानों, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों के लिए निकाले गए, तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रुकते हो। ये है मुसलमानों की बका की एक शिक। अब देखिए कि इस वक्त भी, इस गए गुजरे दौर में भी मुसलमानों की अक्सरियत नमाज पाबंदी से पढ़ती है, ज़कात भी दे ही देते हैं, इस्तेतात होती है तो हज भी देते हैं, गया गुज़रा सही कुछ ना कुछ इस्लामिक गेटअप भी करते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं। आज भी मुसलमानों की अक्सरियत फजर के बाद तिलावत कुरान की करती है, लेकिन जो जिम्मेदारी है वो क्या है कि अल्लाह का दीन उसके बंदों तक कहाँ जा रहा है, उसके रब रब का पैगाम उसके बंदों तक कितना जा रहा है। हम तो गैरों के लिए आए थे, ये उम्मत कुछ ऐसे ही नहीं आ गई, ये उम्मत एक मकसद के तहत पैदा की गई, अल्लाह का कलमा दुनिया में लाना था, ला इलाहा इल्लल्लाह की छाप देनी थी। हम गैरों के पास अल्लाह का पैगाम देने वाले थे, हमने तो अपनों को नहीं दिया। सिर्फ मैं और आप, हम सब अपने आप से सवाल करें कि अल्लाह की किताब हमें समझ आ गई, याद हो गया, फिर दूसरों को बताएंगे ना, क्या घर वालों को बता दिया, ख़ानदानों तक ये पैगाम चला गया, फिर जाएंगे ना गैरों तक। और अगर नहीं गया तो फिर याद रखिए, चीज़ की कदर तब तक होती है जब तक वो काम करे। आपकी बाजू पे घड़ी बंदी होगी, आप उसको बाजू से लगाए रखते हैं, गर्मी भी लगती है फिर भी पहनते हैं, क्यों, ये आपको वक्त बताती है, आपकी अपॉइंटमेंट्स इसके मुताबिक होती हैं, आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को लाते हैं जाते हैं। ज़रा बताइए कि अगर आपकी घड़ी अपना काम छोड़ दे, आप कहीं जाएं 4 बजे समझ के, पता चले कि वहाँ तो लेट हो गया, 5 बजे में आपकी घड़ी पीछे रह गई, शर्मिंदगी होगी ना। और कहीं फ्लाइट आनी हो रात 10 बजे और आप 6 बजे ही पहुंच जाएं ये सोच के कि 10 बज गए, वो घड़ी कहाँ जाएगी, ट्रैश में जाएगी। वो पीतल की चंद सुइयां और वो लोहा और शीशा है, वो घड़ी नहीं रही, घड़ी ने काम करना छोड़ा, ट्रैश में चली गई। उम्मते मुस्लिमा ने काम करना छोड़ा, لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. اللہ نے عزت دی تھی لیکن ہم نیچوں سے نیچے ہو گئے. اگر چاہتے ہیں تو ان ساری باتوں کو زندگی میں لائیں گے تو انشاءاللہ آج بھی اللہ کے وعدے ہیں, آج بھی مدد ملے گی. اگر ہمارا رب کے سوا اور کوئی نہیں تو اللہ کی بھی تو پسندیدہ قوم مسلمان ہی ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں, ڈپریشن کی ضرورت نہیں, صرف پچھلی زندگی پہ نظر ڈال کے پہلی چیز جو میں اور آپ اس کے بعد کر سکتے ہیں, اتنی جب باتیں سنتے ہیں نا تو پھر ذہن بھٹک جاتا ہے. پہلی چیز یہاں سے اٹھنے کے بعد جو مجھے اور آپ کو کرنی ہے یا یہاں بیٹھے ہوئے نیت کرنی ہے وہ کیا, کہ میں اس کتاب کو سمجھوں گی. یہ ہے مین تھیم. اس کے لیے جو کر سکیں کر لے, تبدیلی نہیں آئے گی. آپ کہیں اب اتنے باتیں ہوئیں, بچوں کو کیسے بدلیں, شوہر کو کیسے کریں, ایک ہی چیز ہے. پچھلے دور میں جس سے تبدیلی آئی تھی نا اسی سے آج بھی آئے گی. امام ابن تیمیہ, یہ غالباً ابن قیم رضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, جس چیز نے پچھلے دور میں اصلاح کی تھی, یعنی اللہ کے نبی آئے تو بگاڑ سارے ہی تھے, آپ کو معلوم ہے, اندازہ ہوگا, جس چیز نے اس دور میں بدلا تھا بعد والے دور کے بگاڑ میں بھی وہی چیز اصلاح ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو, مشکل نہیں ہے. پہلے تو میلوں دور جاتے تھے, پہلے تو لوگ مہینوں کے فاصلے پہ جاتے تھے کتاب سیکھنے, آج تو یہ کتاب ہمارے گھروں میں ہے. ہم اپنے گھر کی آرام دہ ماحول, نرم کاؤچز پہ بیٹھ کے یہ کتاب ہمیں پکارتی ہے کہ آؤ. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. سورہ انفال کی آیت ہے کہ ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول کی پکار پہ لبیک کہو کیونکہ اس میں تمہاری زندگی ہے. قوموں کی زندگی اس پکار کو لبیک کہنے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس پہ لبیک پہ لبیک کہنے والا بنا دے, اور ہماری ساری کوتاہیوں کو درگزر کرتے ہوئے ہماری زندگی سے ایسے موقع نہ ختم کر دے کہ ہم اس کتاب کو سیکھ نہ سکیں. کیونکہ دیکھیے کسی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک انتقام کیا ہوتا ہے کہ ان سے توفیق چھین لیتا ہے, انسانوں سے بھی اور قوموں سے بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالیٰ خیری خلقہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.